नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता थारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक संख्या 41 42 43 44 45 और 46। तो 1 2 3 4 5 लगातार 5 श्लोकों में तात्पर्य नहीं है, तो हम 41 से लेकर 46 तक श्लोक कर रहे हैं। श्लोक संख्या 41 है, मेरे पीछे बोलिए।
ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवेर गुणे। हे परंतप, ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। श्लोक संख्या 42।
शमो दमस्तपः शौचम्
छान्दिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्मकर्म स्वभावजम्।
शांति प्रियता आत्मसंयम तपस्या पवित्रता सहिष्णुता सत्यनिष्ठा ज्ञान विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं।
शौर्यम् तेजो धृतिर्दाक्ष्यम् युद्धे चाप्यपलायनम् दानम् ईश्वरे भावश्च छात्रम् कर्म स्वभावजम्।
वीरता शक्ति संकल्प दक्षता युद्ध में धैर्य उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं।
कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकम् कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्।
कृषि करना गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है।
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरता सिद्धिं यथा विन्दति तच्छणो।
अपने अपने कर्म के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। अब तुम मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जा सकता है।
यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वं मितं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।
यतः प्रवृत्तिर् भूतानां
येन
सर्वं इदं ततम् सकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः यतः प्रवृत्तिर् भूतानां येन सर्वं इदं ततम् स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः
शब्दार्थ बोलिए यतः
जिससे
प्रवृत्ति ही उद्भव भूतानां समस्त जीवों का येन जिससे सर्वं समस्त इदं यह ततम व्याप्त है स्वकर्मणा अपने कर्म से तम उसको अभ्यर्च्य पूजा करके सिद्धिं सिद्धि को विन्दति प्राप्त करता है मानवः मनुष्य। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी
है
उस भगवान की
उपासना करके
मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। यहाँ धागा लगाकर सब लोग प्रार्थना निकालिए।
ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकणं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरव अनेक चरिणी निर्विशेषा सुनने वाली पाशादेश तारिणी। श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान ने श्लोक संख्या 41 में कहा है क्या, चार वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और इनके जो कर्म हैं ये विभक्त हुए हैं कैसे, स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण। इनके जो कर्म हैं वो विभक्त हुए हैं स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण। ये जाति से नहीं है कि जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ वो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं है। भगवान कहें ये जो चार वर्ण है तो इनको निश्चित किया गया कैसे, उनके कर्मों से, जो उनके स्वाभाविक जो कर्म है उनसे ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चार वर्ण बनाए गए हैं। तो ब्राह्मण के जो गुण हैं नौ भगवान बताते हैं। एक तो है शांति प्रियता, दूसरा आत्मसंयम, तीसरा तपस्या, चौथा पवित्रता, पांचवा सहिष्णुता, छठवा सत्यनिष्ठा, सातवां ज्ञान, आठवां विज्ञान और नवा धार्मिकता। ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। फिर वैश्य के स्वाभाविक गुण क्या है, कृषि करना, गोरक्षा और व्यापार, वैश्यों के स्वाभाविक गुण है। और शूद्रों का कर्म क्या है, श्रम और अन्यों की सेवा करना, परिचर्या। फिर भगवान कहते हैं अपने अपने कर्मों में लगे हुए जो मनुष्य है वो परम सिद्धि प्राप्त करते हैं। अब तुम उसे सुनो कि किस प्रकार होता है, मतलब अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति कैसे परम सिद्धि प्राप्त करता है। अब श्लोक संख्या 46 में भगवान कह रहे हैं कैसे भगवान की प्राप्ति करता है अपने कर्म से। यथा प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, तो जैसे सब प्राणियों को प्रवृत्ति प्राप्त हुई है, प्रवृत्ति का मतलब कर्म में प्रवृत्ति, कर्म करने की प्रवृत्ति जिस ईश्वर के द्वारा प्राणियों को प्राप्त हुई है। तो प्रवृत्ति का मतलब है आदेश, अंदर से जो प्रवृत्ति होती है कर्म करने की, इसका मतलब परमेश्वर का आदेश है कि आप ये कर्म करो। ये न सर्वम इदम ततम, जिस परमेश्वर के द्वारा ये संपूर्ण जगत नियंत्रित है, व्याप्त है। सुकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धि विन्नति मानवः, तो अपने कर्म से उस परमेश्वर की पूजा करके मनुष्य अपने जीवन को सफल करता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, श्रील प्रभुपाद की। जैसा कि 15वें अध्याय में बताया जा चुका है, सारे जीव परमेश्वर के भिन्न नाम से हैं। तो 15वें अध्याय में भगवान ने बताया ममेवांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। तो भगवान कहते हैं कि मेरा ही अंश है ये जीव लोक में, जो जीव आत्मा है सनातन है लेकिन मेरा अंश है। तो अंश का मतलब क्या है कि जो अंश की सेवा करें, जैसे कि ये जो उंगली है या हाथ है ना, तो पूरे शरीर की सेवा करता है, तो शरीर का अंश है। उसी प्रकार से हम जितने भी जीव हैं ये भगवान के अंश हैं, तो अंश का कार्य है अंशी की सेवा करना है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि हैं। हाँ ठीक है, तो हम लोग जो है भगवान की अंश उसी प्रकार से हैं, जैसे उंगली शरीर का अंश है ना, तो उंगली कहां से निकली, शरीर से निकली और शरीर से ही जुड़ी हुई है, है? और शरीर की सेवा करने के ही लिए है ना। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि हम भगवान से हमेशा जुड़े हुए हैं और भगवान की सेवा करने के लिए, और कोई दूसरा कार्य नहीं भगवान की सेवा के अलावा। आगे प्रभुपाद लिखते हैं वेदांत सूत्र में इसकी पुष्टि हुई है जन्मादिश यथा, अतएव परमेश्वर प्रत्येक जीव के जीवन के उद्गम है। जैसा कि भगवद गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। परा और अपरा ये दो शक्तियों के द्वारा, तो भगवान कह रहे हैं ये न सर्वमिदं ततम, जिस परमेश्वर के द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है ना। तो प्रभुपाद जी के कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है अपने व्यक्तिगत रूप से तो अपने धाम में रहते हैं, है ना, लेकिन फिर यहां कहा गया कि पूरे जगत में वो व्याप्त हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कैसे व्याप्त हैं, अपनी परा शक्ति और अपराशक्ति के द्वारा। पराशक्ति माने जीवात्मा, हम सब जीवात्माएं भगवान की पराशक्ति हैं, और अपराशक्ति जिसे शरीर बना है और शरीर के जो तत्व हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ना मन बुद्धि अहंकार, तो इनके द्वारा भगवान जो है पूरे जगत में व्याप्त हैं। आगे प्रबल लिखते हैं अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करे। सामान्यतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। अंतरंगा शक्ति कौन है परमेश्वर की, राधा रानी है ना, तो भगवान की पूजा करते हैं राधा रानी के साथ। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति कौन है,
दुर्गा
देवी, तो अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। अंतरंगा शक्ति ने आध्यात्मिक जगत बनाया है और बहिरंगा शक्ति ने भौतिक जगत बनाया है। विकृत का मतलब बिगड़ा हुआ, जैसे आप कभी टेढ़े मेढ़े दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो कितना खराब रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है। इस कारण से क्या होता है, इस भौतिक प्रकृति में इस भौतिक संसार में तीन प्रकार के कष्ट मिलते हैं, आध्यात्मिक आध्यात्मिक आदि भौतिक, क्योंकि विकृत प्रतिबिंब है। जैसे कि आध्यात्मिक जगत में सच्चित आनंद है ना, ये तीन जो है ना गुण है ना, तो भौतिक जगत में जो है क्योंकि उसका विकृत प्रतिबिंब है तो तीन प्रकार के दुख यहाँ पर है। आगे रूपा लिखते हैं हाँ, बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। हाँ ठीक है, बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है मतलब ये भौतिक जगत की रचना करती है, लेकिन परमेश्वर यानी भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपना पूर्ण विस्तार करते हैं, पूर्णांश का विस्तार करते हैं, किस रूप में, परमात्मा के रूप में, और सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हाँ यही मतलब है, ये न सर्वम विदम ततम का यही मतलब है। आगे वे सर्वत्र समस्त देवताओं मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा है, अतएव मनुष्य को यह जाना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इस श्लोक में इसी की संस्तुति की गई है। आगे प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्त किया गया है, अतः जो जिस कर्म में लगा है उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण को पूजना चाहिए। तो ये तीसरा पद है, स्वकर्मणातम अभ्यर्थ, अपने कर्म के द्वारा उस परमेश्वर की पूजा करके। तो इसी को ही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, कैसे अपने कर्म से, मतलब जैसे ब्राह्मण है अपने कर्म से भगवान की पूजा करें, है कि नहीं, क्षत्रिय अपने कर्म से भगवान की पूजा करें, वैश्य अपने कर्म से भगवान की पूजा करें, शूद्र अपने कर्म से भगवान की पूजा करें, है कि नहीं, तो ये भाव है। आगे प्रबल कहते हैं यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावनामय होकर सोचता है तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है, यही जीवन की सिद्धि है। भगवान ने भगवत गीता में 12:7 कहा है, तेसाम अहम समुद्धरता, परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं, यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। कोई चाहे जिस वृत्ति पर कार्य में लगा हो यदि वह परमेश्वर की सेवा करता है तो उसे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो अब हम चर्चा करेंगे इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं यथा प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वम इदम ततम, जिस परमेश्वर से सब प्राणियों को प्रवृत्ति प्राप्त होती है। कैसी प्रवृत्ति, कर्म करने की प्रवृत्ति प्राप्त होती है, है ना, जैसे अर्जुन क्षत्रिय है तो यद्यपि युद्ध नहीं करना चाहते हैं लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि वो परमेश्वर जो है ना तुम्हारे हृदय में क्षत्रिय पंक्ता जो स्वाभाविक कर्म है उसमें प्रवृत्ति कर देंगे परमेश्वर यथा प्रवृत्ति भूत आना है ना। तो अपनी प्रवृत्ति देखनी चाहिए हर व्यक्ति को और उसके अनुसार परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए। तो यथा प्रवृत्ति भूताना ये सर्वमिदं ततम जिस परमेश्वर को द्वारा ये संपूर्ण जगत व्याप्त है। तो अर्जुन को भगवान ये इशारा कर रहे हैं। यहां पर भगवान का इशारा किसके लिए है? अर्जुन के लिए है। अर्जुन को भगवान इशारा कर रहे हैं कि तुम अगर क्षत्रिय हो तो तुम्हें ये युद्ध करना चाहिए, परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। अर्जुन ने कहा था कि इस घोर कर्म में आप इसे क्यों लगा रहे हैं? तीसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने कहा था तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, इस घोर कर्म में आप इसे क्यों लगा रहे हैं हे केशव। तो इसके उत्तर में अब भगवान बता रहे हैं कि अगर भगवान की खुशी है जो तुमको घोर कर्म लग रहा है, अगर उसी में ही भगवान प्रसन्न हो रहे हैं तो फिर है ना तुम्हें करना है ना। तुम्हारे लिए घोर है लेकिन भगवान के लिए क्या है? अच्छा लेकिन तो अर्जुन को जो ना बहुत खराब लग रहा है कि मैं अपने हाथों से अपने सगे संबंधियों का वध करूं, है ना, है ना। तो कोई भी कर्म जो है ना अच्छा है या खराब है आपके सोचने से क्या होता है? आपका क्या मूल्य है? आपके सोचने का मूल्य ही क्या है? लेकिन जिस व्यक्ति का मूल्य है उसकी दृष्टि में देखो कि वो कर्म अच्छा है या खराब है, है ना। तो भगवान अगर सर्वोच्च अधिकारी हैं तो हमें उनकी दृष्टि में देखना चाहिए कि कोई कर्म अच्छा है या खराब है, लेकिन नहीं। तो उसी को ही समर्पित भक्त कहते हैं जो भगवान की इच्छा को समर्पित हो जाए। अगर भगवान इस बात को ठीक मानते हैं तो आपको यही सोचना चाहिए भाई यही बात ठीक है। अगर भगवान किसी बात को ठीक नहीं मानते हैं तो आपको सोचना चाहिए ये बात ठीक नहीं है, लेकिन तो उसको समर्पित कहते हैं। तो स्वकर्मणा तम अभ्यास सिद्धि विन्दति मानवः, अपने कर्म से उस परमेश्वर की पूजा करके मानव सिद्धि प्राप्त करता है। तो मानवः का मतलब क्या है? जो मनु की संतान है, जो मनु से उत्पन्न हुए हैं वो मानव कहलाते हैं। तो मानव शब्द से जो है ना भगवान यहां इशारा कर रहे हैं मनु का। मनु की जो शिक्षा है वो भी भगवद गीता की शिक्षा है जो मनु ने दी है। कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मानव का मतलब यही है कि जो व्यक्ति मनु की शिक्षाओं का पालन करे, अगर वो पालन नहीं करता मनु की शिक्षाओं का तो फिर वो मानव नहीं है, मानव नहीं है, दानव है या और भी कुछ हो सकता है, पशु पक्षी कुछ भी हो सकता है, ये मानव नहीं है। सिद्धि विन्दति मानव, जो मनुष्य है मानव है वो मनु की शिक्षाओं का पालन करके अपने जीवन को सफल करता है। सिद्धि विन्दति, तो सिद्धि का मतलब सफलता। तो जीवन की सफलता का मतलब क्या है? आठवें अध्याय का निकालिए पंद्रहवां श्लोक, आठवें अध्याय का पंद्रहवां श्लोक निकालिए। हाँ, तो आठवें अध्याय का पंद्रहवां श्लोक है, इसमें भगवान कहते हैं माम पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है, है ना। तो सिद्धिं विन्दति मानवः इस श्लोक में भगवान ने कहा है, और इस श्लोक में क्या क्या लिखा है? संसिद्धिं परमां गतः, जो परम संसिद्धि को प्राप्त होते हैं, है ना, तो वो जन्म नहीं लेते। तो यही मतलब है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के शरण में जाता है, परमेश्वर की पूजा करता है, तो उसको जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होती है। अब देखिए श्लोक में कहा गया यथा प्रवृत्ति भूदानाम, जिस ईश्वर के द्वारा सब प्राणियों में प्रवृत्ति प्राप्त होती है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि भगवान ऋषिकेश हैं। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म में प्रवृत्ति किया गया है, ये सोचना चाहिए। तो अगर परमेश्वर आपसे कोई काम कराना चाहते हैं तो आपको अपना भाग्य समझना चाहिए कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि परमेश्वर मुझसे ये काम कराना चाहते हैं, है? और परमेश्वर की प्रसन्नता होगी तो अपना सब काम बन जाएगा, है कि नहीं? इस भौतिक संसार में कोई व्यक्ति किसी को खुश करना चाहता है, है? तो जानने की कोशिश करता है कि उसको क्या चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है ना? उस प्रकार से वो उस व्यक्ति को खुश करने के लिए काम करता है कि नहीं? तो उसी प्रकार से जो भक्त हैं वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं, और अगर भगवान प्रसन्न हो गए तो फिर उसका बंधन से छुटकारा हो जाता है ना? सिद्धि जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है। क्या सफलता है? पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करना, पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करना। माम पेते पुनर्जन्म दुखारे मसाशुतम, इस भौतिक संसार में जो पुनर्जन्म है ये दुखों का स्थान है और अशाश्वत है। कोई व्यक्ति चाहे कि भाई दुख में भोग रहा हूं तो चलो भोगता रहूं, ये कम से कम जिंदा तो रहूं, लेकिन नहीं, मार भी दिया जाता है, आखिर मृत्यु का भी स्थान है, दुख का भी स्थान है और मृत्यु का भी स्थान है। तो उस परमेश्वर को प्रसन्न करके व्यक्ति अपने जीवन की सफलता प्राप्त करता है। तो यही जीवन की सफलता है कि हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, और जो है अपना जो वर्ण है उसको जानना चाहिए हर व्यक्ति को कि कौन किस वर्ण का है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ में जो है लोगों को सबसे पहले जाप कराया जाता है, नियमित रूप से जाप करें, चार नियमों का पालन करें। तो इस प्रकार से नियमित रूप से जो भक्तियों की क्रियाएं हैं जब वो करता रहता है तो उससे क्या होता है, वो व्यक्ति रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठता है, रजोगुण तमोगुण से ऊपर उठता है, सत्वगुण में आता है, है? और सत्वगुण में फिर उसको जो है प्रकाश होता है, है? जिससे कि पता चलता है कि मेरा कौन सा वर्ग है, कि नहीं? जो जो शूद्र है तो उसमें प्रवृत्ति होती है क्या, परिचर्या करने की, है? तो जो व्यक्ति जिसका मन सत्वगुण में होता है, बुद्धि जो है ना, बुद्धि की बात नहीं करिए, बुद्धि जो ना शूद्र की तमोगुण में होती है, ठीक है, और वैश्य की बुद्धि होती है रजोगुण तमोगुण मिला, और क्षत्रिय की बुद्धि होती है रजोगुण सत्वगुण मिला हुआ, और ब्राह्मण की बुद्धि होती है सत्वगुण में, है कि नहीं? तो ये जो है बुद्धि से है, लेकिन अगर ये मन जो है ना इनका सत्वगुण में होता है तो ये जो है ना अपने कर्म से फिर उस परमेश्वर की पूजा करते हैं, है ना? इसलिए सत्वगुण में आना जरूरी है। तो शूद्र के अंदर जो है ना अगर सत्वगुण है तो वो जो है ना कर्म करता है परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए, क्या, परिचर्या कर्म करता है। परिचर्या का मतलब है जो आदेश दिया जाए उसका पालन करता है। शूद्र जो है जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए सेवा करता है तो फिर वो जो है ये नहीं देखता है कि मैं जिसकी सेवा कर रहा हूं उससे मुझे क्या मिलेगा, क्या फायदा होगा, कोई नहीं सोचता है। या कोई जो ना बात अगर उसके मन के अनुकूल नहीं होती है ना, तो शूद्र ये नहीं सोचता कि इन्होंने मुझे खुश नहीं किया, इन्होंने मेरे विरुद्ध आचरण किया है इसलिए मैं इनकी सेवा नहीं करूंगा। शूद्र अपने कर्तव्य पर जो है स्थिर रहता है क्योंकि वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा है ना? तो इस तरह से प्राचीन काल में व्यवस्था थी शूद्रों को जो है ना व्यवस्था थी, शूद्र जो है ना अपनी शारीरिक सुविधा की दृष्टि से नहीं देखते थे कि मैं इसकी सेवा करूं या उसकी सेवा नहीं करूं। उनके जीवन का जो खर्चा है, जीवन का जो निर्वाह है, वो कोई भी मालिक करता है तो शूद्र उसकी सेवा करता है। तो ये जो है भावना है, भगवद गीता की ये भावना है। कृष्ण भावना मृत का मतलब ये होता है, तो कृष्ण की भावना में जो है ना कर्म करता है, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति जो है उस पर प्रसन्न होता है और उसको बहुत इनाम देता है, या प्रसन्न नहीं होता और उसको इनाम नहीं देता है, या नाराज भी होता है, तो वो इससे जो है ना व्यथित नहीं होता है, तो परिचर्या है। इसी प्रकार से वैश्य का कर्म है, जब सत्वगुण में होता है कोई व्यक्ति, उसको पता चलता है कि मेरे अंदर तो वैश्य के गुण हैं, तो फिर वो इन गुणों से, इन कर्मों के द्वारा वो भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करता है। और तीन प्रकार के कर्म कौन कौन से वैश्य के? कृषि, गोरक्षे, वाणिज्य। एक तो खेती करना, उसी गऊओं की रक्षा करना, और तीसरा व्यापार करना, है ना। तो ये है वैश्य कर्म स्वभाव जन। तो ये जो स्वाभाविक कर्म है, ये कब होते हैं व्यक्ति के जीवन में? जब उसके जीवन में कोई अभाव ना हो, अभाव ना हो, कोई परेशानी, आपत्ति ना हो, विपत्ति ना हो, तब है? अगर विपत्ति आ जाती है